ഫോക്കസ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ദർബാർ സജ് ഗയാ, ഹിറക് ലഗാ, ഔർ ഇസ് ദർബാർ മേ ഹസരത്ത് ഉസ് വഖ്ത് അഭി ഹസരത് നഹീ ഥേ, അബു സുഫിയാൻ കോ തലബ് കിയാ ഗയാ. ഹിറക്ല ബാദ്ഷാ ഔർ ഉൻകേ ബഡേ ബഡേ വുസരാ ബൈഠ് ഗയേ. അബു സുഫിയാൻ കേ സാഥിയോ കോ പീച്ഛേ ബിഠാ ദിയാ ഗയാ ഔർ യേ കഹ് ദിയാ ഗയാ കേ അഗർ യേ ജൂഠ് ബോലേ തോ ഉൻകാ ജൂഠ് തും ലോഗ് ജാഹിർ കർ ദേനാ. അബു സുഫിയാൻ കേതേ ഹൈ, ഫവല്ലാഹി, അല്ലാഹ് പാക് കി കസം, ലൗല ഹയാ മിൻ അൻ യഅസിറു അൻ യഅസുറു അലയ്യ കസിബൻ. അല്ലാഹ് കി കസം, അഗർ ഇസ് ബാത് കി ശരം ന ഹോതി കേ വോ മേരേ ബാരേ മേ ജൂഠ് കോ നക്കൽ കരേംഗേ, മുജ് പർ ജൂഠ് നക്കൽ കരേംഗേ, തോ മേ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കേ ബാരേ മേ ജറൂർ ജൂഠ് ബതാതാ. യാനി അബു സുഫിയാൻ കഹനെ ലഗേ, ആപ് ഹിറക്ല സവാൽ കരേംഗേ തോ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കേ ബാരേ മേ മുഖ്തലിഫ് ചീസേ മുജേ പൂച്ഛേംഗേ, തോ മേ കോയി ബാത് ഉൻകേ ബാരേ മേ ജൂഠി ബതലാ ദൂ. ലേക്കിൻ മുജേ ശരം ഇസ് ബാത് കി ആയി കേ അഗർ മേ ജൂഠ് ബോലുംഗാ തോ യേ പീച്ഛേ ജോ മേരേ സബ് സാഥി ബൈഠേ ഹുവേ ഹൈ യേ മുജേ ഛോഡേംഗേ നഹീ. അഗർ ഇസ് വഖ്ത് നഹീ ബോലേ, ഖാമോഷ് രഹേ, ചൂക്കേ ഹം ദൂസരേ മുൽക് മേ ആയേ ഹുവേ ഹൈ, ഹിറക് ലകേ ദർബാർ മേ ഹൈ, വോ മേരി തക്സീബ് നാ ഭീ കരേ തോ അഭി മക്കാ ജാകർ തോ ലോഗോ കേ ദർമിയാന യേ ചർച്ചാ കരേംഗേ കേ അബു സുഫിയാൻ തോ ഭായി ജൂഠാ ആദ്മി ഹൈ, വഹാ ഹിറക് ലകേ ദർബാർ മേ ജൂഠ് ബോലാ ഥാ. ദേഖോ കേ യഹാ ചാഹെ ദർബാർ ശാഹി മേ മേ ജൂഠ് ബോലൂ തോ യേ ലോഗ് മേരേ ജൂഠ് കോ ജാഹിർ നാ കരേ, ചൂക്കേ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സേ അബു സുഫിയാൻ കോ ഭീ ദുശ്മനീ ഔർ യേ ജിതനേ ഉസ്കേ റുഫഖാ ഹൈ ഉൻകോ ഭീ ദുശ്മനീ, സബ്കോ ദുശ്മനീ. ഇസിലിയേ ദുശ്മനീ കേ അന്ദർ മേ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കേ ബാരേ മേ കോയി ഗലത് ബാത് ബോലൂംഗാ തോ യേ ലോഗ് യഹാ മേരി തക്സീബ് നഹീ കരേംഗേ, ഇസ്കാ തോ മുജേ യക്കീൻ ഥാ. ലേക്കിൻ ഫിർ മക്കാ ജാകർ കേ മേരേ ബാരേ മേ ലോഗോ കോ കഹേംഗേ കേ അബു സുഫിയാൻ കൈസേ ലീഡർ ആദ്മീ ഹൈ, വോ തോ ജൂഠ് ബോൽതേ ഹൈ. ദേഖ് ലിയാ, ദരഅസൽ ബാത് യേ ഥീ കേ വോ ലോഗ് ഇസ്ലാം കേ ദുശ്മൻ ഥേ, മുസൽമാനോ കേ ദുശ്മൻ ഥേ, ലേക്കിൻ ഉസ്കേ ബാവജൂദ് ജൂഠ് ഉൻകേ യഹാ ബഹുത് ബുരി ചീസ് സംജി ജാതി ഥീ. കുഫാർ ഥേ, മുശ്രിക്കീൻ ഥേ, ലേക്കിൻ ഫിർ ഭീ ഉൻകേ യഹാ ജൂഠ് ബഡി ബുരി ഔർ ഖതർനാക് ചീസ് സംജി ജാതി ഥീ. ഔർ അബു സുഫിയാൻ കോ യേ ഡർ ലഗ രഹാ ഥാ കേ ആയിന്ദാ മേരി തരഫ് ജൂഠ് കി നിസ്ബത് ഹോ ജായേഗി. ദേഖിയേ ഉസ് ജമാനേ കേ സർദാർ അപ്നി തരഫ് ജൂഠ് കി നിസ്ബത് സേ ഭീ ഡരാ കർതേ ഥേ കേ ഹമാരി തരഫ് കോയി ജൂഠ് കി നിസ്ബത് കർ ദേ രേ. ഔർ ഇസ് ജമാനേ കേ സർദാരാൻ ജൂഠ് കോ സബ് കുഛ് സമജ് രേ, അപ്നാ ഫന്നി കമാൽ സമജോ, അപ്നാ ഇക്തിദാരി കമാൽ സമജോ, ജോ കുഛ് സമജോ. തോ യേ കട്ടർ കാഫിർ അബു സുഫിയാൻ, ലേക്കിൻ ആയിന്ദാ ചൽക്കർ കേ ഭീ അപ്നി തരഫ് ജൂഠ് കി നിസ്ബത് ഹോ യേ ഉൻകോ ഗവാരാ നഹീ ഹൈ. കൈസാ ഇൻകാ എഹ്തിയാത് ഹോഗാ, അന്ദാജാ ലഗാഓ. അബ് യഹാ ശുർറാ നേ ഏക് സവാൽ ഉഠായാ ഹൈ കേ വോ ലോഗ് തോ ബേഈമാൻ ലോഗ് ഥേ, ഫിർ ഭീ ജൂഠ് കോ ഇത്നാ കബീഹ് കൈസേ സമജ്തേ ഥേ, കിസ് ബുനിയാദ് പർ വോ ലോഗ് ജൂഠ് കോ ബുരാ സമജ്തേ ഥേ. ഉൻകേ യഹാ ബുത് പരസ്തി കോയി ചീസ് നഹീ, ബുത് പരസ്തി ആം, ശരാബ് നോശി ആം, ഔർ ജോ ഹൈ മാല് ലൂട്ട് ലേനാ ആം. ലേക്കിൻ യേ ജൂഠ് ക്യോ ഇൻകേ യഹാ ഇത്നാ കബീഹ് ഔർ ബുരാ സമജാ ജാതാ ഥാ? നമ്പർ ഏക്, किज्ब का बुरा होना, सिद्क का अच्छा होना, साबिका शरीयतों से इनको सीखने को मिला था, इसलिए कि शरए इब्राहिमी की कुछ बातें मक्का के मुशरिकीन में नकल दर नकल चली आ रही थी। तो किस्ब की कबाहत, सिद्क का हुस्न उनको साबिका शरीयत से सीखने को मिला था। नंबर दो, वहां उर्फ था कि वो झूठ को बुरा समझते थे। देखो, इलाके इलाके के उर्फ, कौम कौम के उर्फ, खानदान खानदान के उर्फ अलग अलग हुआ करते हैं। मसलन बाज़ इलाकों के अंदर लुंगी पहनना ऐब समझा जाता है। बाज़ शहर ऐसे हैं, बाज़ खानदान ऐसे हैं कि आप लुंगी पहन के निकलोगे तो पूरा गांव ताज्जुब से देखेगा, वो बा लुंगी पहने निकल रहा है इस तरीके से। और जो है बाज़ जगह ऐसी है कि आप लुंगी न पहनो तो ऐब समझा जाए, लुंगी न पहनो तो ऐब समझा जाए कि भाई इन्होंने लुंगी क्यों नहीं पहनी, लड़कवा को क्या हो गया कि लुंगी बगैर निकल आया, इस तरीके से। तो इलाके के उर्फ अलग अलग हुआ करते हैं, खानदानी उर्फ अलग अलग हुआ करते हैं। तो कहा कि उस जमाने में अहले मक्का और अहले अरब में ये उर्फ बन गया था कि वो लोग जो है झूठ को निहायत बुरा समझते थे। तीसरी बात, हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत प्यारी तौजीह की है इस मौके पर। शाह साहब फरमाते हैं कि मुस्तकबिल में चल कर के अबू सुफियान को हदीस का रावी बनना था, और बारी ताला के यहाँ ये गवारा नहीं है कि अपने प्यारे नबी की प्यारी हदीस का रावी झूठ कभी बोले। इसीलिए उस जमाने में वो कुफ्र पर थे, लेकिन फिर भी बारी ताला ने उनको झूठ से बचा लिया। तो आइंदा चल कर के ये ईमान लाने वाले हैं और हदीस के रावी बनने वाले हैं और यही हदीस लोगों को सुनाने वाले हैं। इसीलिए चूंकि मुस्तकबिल में वो रावी हदीस बनने वाले हैं और बारी ताला को ये गवारा नहीं कि अपने नबी की हदीस का रावी झूठ बोले, उस पर झूठ की तोहमत लगे, झूठ की तोहमत वाला आदमी रावी हदीस बने ये बारी ताला को गवारा नहीं। इसलिए उस मौके पर कुफ्र के बावजूद अबू सुफियान को बारी ताला ने झूठ से बचा लिया। देख लिया, बास काम ऐसे होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं ना कि हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले भी कुफ्र शिर्क से बचे हुए होते हैं। शराब जिस जमाने में हलाल थी उस जमाने में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी नहीं पी जिस जमाने में हलाल थी तब भी। ये कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से बचाने का इंतज़ाम, तो यहाँ अबू सुफियान को कुदरती तौर पर झूठ से बचाने का बारी ताला ने इंतज़ाम फरमाया कि झूठ की तोहमत उनके ऊपर न लगे। सुम्म काल अव्वल मा सअलनी अन्हु अनकाल, फिर सुम्म काना यानी हिरकल ने सबसे पहली बात जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुझसे पूछी। अब हिरकल अलग अलग सवालात कर रहे हैं, चूंकि उनको तो पूरी तहकीक करनी थी कि जो मुद्दईये नबूवत है, साहिबे खत है, वो कौन है, उनका तारुफ क्या है, उनकी हकीकत क्या है। इसीलिए हिरकल पूरी तहकीक करना चाहते थे। तो कहा सबसे पहला सवाल किस बारे में किया, नसब और ख़ानदान के बारे में किया कि मुद्दईये नबूवत साहिब खत कैफ नसबहु फीकुम, तुम्हारे दरमियान में उनका नसब और ख़ानदान कैसा है, ये सवाल किया। देखो भाई, दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक लफ्ज़ आता है नसब, दूसरा लफ्ज़ आता है हसब। नसब और हसब में बारीक फर्क है। नसब कहा जाता है आबाओ अजदाद की तरफ खानदानी निस्बत को नसब कहा जाता है। जैसे मेरे अब्बा ये, मेरे दादा ये, मेरे सकर दादा ये, तो आबाओ अजदाद की तरफ खानदानी निस्बत को नसब कहा जाता है। हसब किसको कहते हैं? आबाओ अजदाद के वो काम जो फख्र के समझे जाते हैं कि मेरे दादा, मेरे अब्बा, मेरे चचा वो तो ऐसे थे कि एक झटके में मच्छर मार डालते थे, इतने बहादुर थे वो, तो शुजात खान थे वो। तो इस तरीके से अपने बड़ों के किसी कारनामे के ऊपर आदमी फख्र करे उसको कहा जाता है हसब। तो यहाँ पर पूछा कि कैसा है उनका नसब तुम्हारे दरमियान में। कुल तो अबू सुफियान ने कहा कि वो मुद्दई नबूवत हमारे दरमियान में आली नसब के आदमी हैं। ये नसब के नीचे जो तनवीन है ना, ये तनवीन बराए ताजीम है, इसीलिए तर्जुमा करेंगे वो मुद्दई नसब, मुद्दई नबूवत हमारे दरमियान में आली और ऊंचे नसब के आदमी हैं। दूसरा सवाल देखो, तमाम सवाल जहन में रखते जाना, इसीलिए कि अभी तो हिरकल सवाल करेंगे, अबू सुफियान जवाब देंगे। जब सारे सवाल जवाब हो जाएंगे तो आखिर में अबू सुफियान के हर हर जवाब पर हिरकल अपना तबसेरा बताएंगे कि मैंने यूं सवाल किया अबू सुफियान, अबू सुफियान तुमने ये जवाब दिया, उस पर मेरा ये तबसेरा है। और दुनिया का इतना बड़ा सुपर पावर ताकत का बादशाह जब तबसेरा करे तो वो तबसेरा भी अहमियत रखता है। तो आखिर में वो तबसेरा करेंगे हर हर सवाल के जवाब के ऊपर। दूसरा सवाल, कौल हिरकल ने कहा क्या इस तरह की बात तुम में से किसी ने इनसे पहले कही थी? इस तरह की बात यानी नबूवत वाली बात, यानी अभी जो नबूवत का दावा इन्होंने किया है, ऐसा नबूवत का दावा तुम में से, तुम्हारे लोगों में से, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे अफराद में किसी ने इससे पहले किया था? कुलतुला, अबू सुफियान ने कहा नहीं, आज तक किसी ने हमारे अंदर ऐसा नबूवत का दावा नहीं किया। तीसरा सवाल हिरक लगा, फहल कान मिन आबा इही मिन मलिकिन, क्या उनके आबाओ अजदाद में कोई बादशाह गुजरा है? यानी जो नबूवत का दावा कर रहे हैं उनके आबाओ अजदाद में, ख़ानदान में कोई बादशाह गुजरे हैं? कुलतुला, हिरकल अबू सुफियान ने कहा नहीं, उनके आबाओ अजदाद में कोई भी बादशाह गुजरे नहीं है। सवाल के नंबर आप लगाते जाओ। قال فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم, चौथा सवाल कि क्या लोगों में शरीफ लोग इनकी इत्तिबा या और पैरवी करते हैं या कमज़ोर लोग उनकी इत्तिबा और पैरवी करते हैं? लोगों में शरीफ लोग, शरीफ का मतलब क्या वो यहाँ समझो। शुरफा का मतलब है जो लोगों के सामने बड़े समझे जाते हो, फी जाती ही अच्छा और बड़ा होना मुराद नहीं है। इसलिए कि फी जाती ही अच्छा और बड़ा कौन है? इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो तकवा वाला होगा वो फी जाती ही अल्लाह की नजर में बड़ा है। यहाँ तो बड़ा होने का मतलब क्या, लोग जिनको बड़ा समझते हो, लोगों की नजर के अंदर जो बाइज्जत, बाशराफत, बाकरामत हो कि हमारे लीडर जनाब आली है, ये हमारे जो है कौम के बड़े हैं, जो कौम, जो अवाम की नजर में बड़े मुअज्ज़ज़, ऊंचे दर्जे के, ऊंचे मकाम के समझे जाते हैं, ये है अशराफुन्नास। ये बड़ा ऊंचा सवाल किया हिरकल ने कि क्या कौम के लोगों के शरीफ लोग उनकी इत्तिबा करके ईमान लाते हैं, या कौम के कमजोर लोग उनकी इत्तिबा करके ईमान लाते हैं। कुलतुबल दुआफा ओहम, अबू सुफियान कहते हैं कि मैंने अर्ज किया कि नहीं नहीं हमारे कमजोर लोग उन पर ईमान लाते हैं, जो कमजोर लोग हैं वो उन पर ईमान लाते हैं। देखिए कौम के जो तकब्बुर वाले लोग होते हैं, नुखुवत वाले लोग होते हैं, जो कौम में लीडरी करने वाले लोग होते हैं, उनको अपनी ही कौम के किसी फर्द की इत्तिबा करने में आ रहती है कि मैं कौम का बड़ा, मैं कौम के एक आदमी की इत्तिबा मैं करूं, ये इनको गवारा नहीं होता है। इसीलिए आज बहुत से मुसलमान हैं जो बड़े लीडर बने बैठे हुए हैं, लेकिन कौम का कोई आलिम कोई मुफ्ती उनकी रहबरी करेगा तो वो उनको इसलिए पसंद नहीं है कि लीडर में ने ये कौन मुझे रहबरी करने वाला, इस बुनियाद पर वो मानते नहीं है और इस बुनियाद पर वो अमल करने तैयार नहीं होते। वो ये नहीं सोचते कि भले मैं लीडर गीदड़ बना हुआ हूँ और ये मेरी कौम का एक फ़र्द है, लेकिन बहरहाल इस पर इसके पास शरीय इल्म है, वो कुरान हदीस की रोशनी में मेरी रहबरी कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचेगा, वो यूँ सोचेगा मैं लीडर, मैं ये मेरी कौम का आदमी और उसकी मुझे इत्तिबा करने की, बस ये चीज़ उनको गवारा नहीं होती। तो ये सवाल किया कि जो शुरफा समझे जाते हैं, बड़े समझे जाते हैं, लीडर किस्म के समझे जाते हैं, टॉप सोसाइटी के लोग समझे जाते हैं, वो इनकी इत्तिबा करते हैं, या पसमानदा बैकवर्ड रजील किस्म के लोग इन पर ईमान लाते हैं। तो अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, मक्का में जो गुलाम किस्म के लोग हैं, कोई रूम का आया सुहेब है और कोई फारिस का सलमान है, वो बिलाल हमारा गुलाम, ऐसे सब लोग उनके हाथ पर ईमान लाते हैं, कोई शरीफ लोग उनके हाथ पर ईमान लाते नहीं हैं। फिर अब हिरकल ने सवाल किया, अयज़ीदूना अम यनकुसूना, इनके मुत्तबीन की तादाद ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। कुलतु बल यज़ीदूना, अबू सुफियान ने कहा कि हाँ इनकी तादाद तो रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, रोज़ बरोज़ इनके मानने वाले बढ़ रहे हैं। पहले एक अबू बकर थे, खदीजा थी, अली थे, जवानों के अंदर अली, बड़ों में अबू बकर, औरतों में खदीजा, पहले ये तीन ही थे, अब धीरे 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 इनके मानने वाले बढ़ रहे हैं, तादाद में इजाफा हो रहा है। कौल, हिरकल ने कहा, फहल यर्तद्दु अहदुम मिनहुम सुख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीही, क्या उनमें से कोई मुर्तद होता है उनके दीन से नाराज होकर के उनके दीन में दाखिल हो जाने के बाद। देखो बड़ा मुकय्यद सवाल किया है हिरकल ने, क्या मुकय्यद सवाल किया कि कोई आदमी इस्लाम में दाखिल हो जाए, पूरे पूरा मुसलमान बन जाए, उसके बाद इस्लाम से नाराज होकर के इस्लाम को नापसंद समझ करके कोई आदमी मुर्तद हुआ है, यानी मुर्तद होने के और असबाब तो हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से नफरत करके, इस्लाम के किसी हुक्म से नफरत करके, इस्लाम को नापसंद करके, इस्लामी हुक्म को नापसंद करके कोई आदमी मुर्तद हुआ है, तो अबू सुफियान ने क्या कहा, कुल तो ला, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ कि कोई आदमी ईमान लाया फिर ईमान से नफरत करके निकल गया, ईमान से ऐसा तो नहीं हुआ कि ईमान लाया फिर इस्लाम से कराहत की वजह से वो इस्लाम से निकल गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ सवाल पैदा होता कि अबू सुफियान के सगे दामाद मुर्तद हो गए थे, रिवायत में गुजरा, कल ही तो सबक में बतलाया था, अबू सुफियान के दामाद खुद मुर्तद हो गए थे इस्लाम छोड़ करके, क्या नाम बतलाया था अबू सुफियान के दामाद का, उबैदुल्ला इब्ने जाहश, किससे इनका निकाह हुआ था? हजरत उम्मे हबीबा रदी अल्लाह ताला अन्हा से। वो क्यों मुर्तद बन गया? माशके की वजह से। तो यहाँ एक इश्काल खड़ा होता है कि अबू सुफियान के खुद के दामाद मुसलमान हुए और मुसलमान होकर के मुर्तद हो गए, और अबू सुफियान कह रहे हैं कि कोई भी आदमी मुर्तद नहीं हुआ। तो जवाब जाहिर है कि उबैदुल्ला इब्ने जहश जो मुर्तद हो गए थे, वो तो किसी ईसाई औरत के साथ मुआशके की वजह से, वो इस वजह से मुर्तद नहीं हुए कि नऊज़ुबिल्ला इस्लाम से नफरत हो गई, नऊज़ुबिल्ला इस्लाम के किसी कानून से नफरत हो गई, इस्लाम को उन्होंने नापसंद समझा और मुर्तद हो गए। नहीं नहीं नहीं, उनका इर्तिदाद था मुआशके की वजह से। इसीलिए अबू सुफियान ने यहाँ पर सही सही जवाब दे दिया। अब यहाँ एक और गौर करने की बात है, मा कबल में जो सवाल किया था अयज़ीदून अम यनकुसून, उनकी तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, उसी के ज़ेल में ये इर्तिदाद वाला सवाल भी आ जाता है। इसलिए कि जितने मुर्तद होके निकल जाएंगे वो तादाद कम हो जाएगी इस्लाम में से। समझो 50 आदमी मुसलमान है, 5 मुर्तद हो गए तो 45 रह गए, तो इर्तिदाद की वजह से 5 कम हो गए। तो साबिका सवाल के ज़िम्न में ये बाद वाला सवाल शामिल है, फिर भी हिरकल ने अलग से ये सवाल क्यों किया? इश्काल समझ में आया? अयज़ीदून यनकुसून के ज़ेल के अंदर ये सवाल शामिल था इर्तिदाद वाला भी, कि भाई तादाद घटने की कोई भी वजह हो, इर्तिदाद या कोई और वजह, फिर अलग से सवाल ये हिरकल ने क्यों किया? तो कहा मा कबल वाले सवाल में ये सवाल शामिल था, फिर भी किसी दीन के मुतालिक ये अहम सवाल था, इसीलिए अलग से सराहतन भी पूछ लिया। किसी भी दीन के बारे में ये अहम तरीन सवाल था, इसीलिए अलग थलग भी ये सवाल पूछ लिया। ये हिकमत समझ में आती है। आगे सवाल, कौल हिरकल ने कहा फहल कुंतुम तत्तहिमूनहु बिलकिस्बी क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाला, क्या तुमने कभी उनके ऊपर झूठ की तोहमत लगाई है इससे पहले कि उन्होंने वो बात कही जो कही? क्या तुमने कभी उन पर झूठ की तोहमत लगाई है इससे पहले कि उन्होंने वो बात कही जो कही? यानी नबूवत वाली बात जो उन्होंने कही, नबूवत का ऐलान किया, नबूवत का दावा किया, उससे पहले कभी इनके बारे में झूठ की तोहमत आई? कभी इन्होंने झूठ बोला? किसी ने भी उन पर झूठ की तोहमत लगाई? देखो ये सवाल ऐसा था कि हिरकल ने बड़ी अहमियत देकर के ये सवाल किया। कुल तुला, मैंने कहा नहीं, झूठ तो क्या बोलते, कभी उन पर झूठ की तोहमत भी नहीं लगी। ये तो दो बातें अलग अलग हैं। एक है वाकियतन झूठ का सुदूर और एक है झूठ की तोहमत। एक आदमी है हमेशा सच बोलता है, लेकिन कोई आदमी उन पर झूठ की तोहमत लगा डाले, ये तो बहुत आसान है। आप माशाल्लाह सच्चे हो, सच के आदि हो, सच का एहतमाम करते हो अपनी जात के एतबार से, लेकिन कोई आपको उठा के कह दे झूठे कहेंगे, तो उसको तो आप रोकने नहीं जाओगे। तो ये सवाल बड़ा बारीक है कि नफ्से झूठ के बारे में नहीं पूछ रहा है, झूठ की कभी किसी ने तोहमत लगाई इनके ऊपर? समझे ना, दो बात में फर्क अलग अलग। आप अपनी जात के तौर पर हमेशा सच्चे हो, कभी झूठ नहीं बोलते हो माशाल्लाह, लेकिन कोई लबाड़ किस्म का आदमी डायरेक्ट आपको कह दे मौल साहब आप झूठ बोल रहे हो, तो आप कहाँ उसका मुंह पकड़ने जाओगे, भाई मैं मौलाना होकर मुसल्ले पे झूठ बोलूंगा, क्या तू बात बोल रहा है, शर्म नहीं आती। तो झूठ की तोहमत तो दूसरा लगाता है और उसको हम रोकने नहीं जाएंगे। तो हिरक लगे सवाल का मतलब क्या था, इनका झूठ बोलना न बोलना नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि ये पूछ रहा हूँ कि कभी किसी ने उनके ऊपर झूठ की तोहमत लगाई, और ये बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए कि तोहमत आम है, तोहमत नहीं लगी तो झूठ तो यकीनन नहीं बोला इन्होंने, तोहमत नहीं लगी तो झूठ तो यकीनन नहीं बोला। इसीलिए पूछा कि कभी उनके तुम लोगों ने उन पर झूठ की तोहमत लगाई, कब लो उसके कि उन्होंने नबुवत का दावा किया। फुल तोला, कभी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पूरे मक्का का बच्चा कच्चा बालिग मर्द औरत हर एक इनको सादिकुल अमीन कहा करता था, कभी इनके ऊपर झूठ की तोहमत लगी नहीं है। कॉल फहल यगदीरो, हिरकल ने सवाल किया, कहीं कभी उन्होंने अहद में खिलाफ वर्जी की, यगदीरो उन्होंने मुआहदा किया हो और उसकी खिलाफ वर्जी कभी की। कुल तो ला, मैंने कहा नहीं, कभी इन्होंने मुआहदा करके कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुआहदा निभाने वाले थे, आप कहाँ मुआहदा की खिलाफ वर्जी करने वाले थे। इसका सही जवाब दिया अबू सुफियान ने, लेकिन एक बात बीच में घुसा दी यहाँ पर, क्या घुसाई, वनहनु मिनहु फी मुद्दतिन ला नदरी मा हुवा फाइलुन फीहा। قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة। देखिए अबू सुफियान की जहानत भी शरारत, देखो क्या कह रहे हैं। सवाल का सही जवाब तो दे दिया है कि इन्होंने कभी खयानत नहीं की, लेकिन एक हाशिया बढ़ा दिया, जवाब तो पूरा हो गया, लेकिन हाशिया क्या बढ़ाया, हम उनके साथ इस वक्त के ऊपर एक मुआहदे की मुद्दत में चल रहे हैं, हमको नहीं मालूम कि उसमें वो क्या करेंगे, हमको नहीं मालूम कि उस मुआहदे की मुद्दत में वो क्या करेंगे, यानी इस वक्त पर हमारा उनसे हुदैबिया में 10 साल का जंग बंदी का मुआहदा हुआ है, और अभी वो 10 साल की जंग बंदी का मुआहदे का टाइम चल रहा है, मालूम नहीं कि वो मुआहदा निभाएंगे या मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे। देख लिया जहानत भी शरारत, सामने वाले के दिल में शक का बीज डाल दिया, लेकिन सामने हिरकल था, वो इससे मुतासिर होने वाला नहीं था, ये शक का बीज डाल दिया। ऐसे कोई आपको पूछे कि भाई ये तालिब इल्म कैसा है, कि अब तक तो अच्छा है लेकिन कल क्या कर डाले कुछ कहवावे नहीं इसके बारे में, आज तक तो ये शरीफ है लेकिन कल क्या करे मैं नहीं कह सकता। आपने सही जवाब दिया, लेकिन सामने वाले के जहन में शक तो डाल दिया ने कि इनको आइंदा कल के बारे में कोई एतमाद नहीं है। बस ये काम अबू सुफियान ने यहाँ किया है कि इस वक्त हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 साल का जंग बंदी का मुआहदा चल रहा है, मालूम नहीं कि वो जंग बंदी निभाएंगे के नहीं निभाएंगे, खिलाफ वर्जी कर डालेंगे और अहद शिकनी करेंगे, इसका मुझे इल्मा नहीं है। ये तुझे बोलने की जरूरत क्या, तुझे इतना पूछा था ना कि कभी आज तक खयानत की, जवाब था नहीं, ये दूसरा हाशिया बढ़ाने की जरूरत क्या थी कि अभी हम मुआहदे में चल रहे हैं और आइंदा वो मुआहदा निभावे ना निभावे वो मैं नहीं कह सकता, ये बढ़ाने की जरूरत क्या थी। बस इसका मकसद क्या था कि हिरकल के जहन में कोई बात में डाल दो जिसकी वजह से मुद्दई नबूवत की ताजीम पैदा न होने पाए, मुद्दई नबूवत की अजमत पैदा न होने पाए, ऐसा कोई शोशा में छोड़ दो, बस ये बात इस जुमले का मकसद था। शुर्रा कहते हैं अबू सुफियान को यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम دس سال کی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہرگز نہیں کریں گے. اس کو پورا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جو دس سال حدیبیہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے یہ شخص خلاف ورزی کرنے والے نہیں ہیں, پورا یقین تھا. لیکن بات مستقبل تھی, مستقبل کے متعلق تھی, اسی لیے کچھ شیبا کھڑا کرنے کا اس کو موقع مل گیا اور اس نے ایک شخص شیبا کھڑا کر ڈالا. پھر ساتھ میں کہتا بھی ابو سفیان, چونکہ یہ ایمان لانے کے بعد کے زمانے کی پوری بات عرض کر رہے ہیں, ولم تمکنی, مجھے موقع نہیں دیا کسی بات نے کہ میں اس میں کوئی چیز گھساؤں سوائے اس کلمے کے. مجھے موقع نہیں دیا کسی کلمے نے کہ میں اس میں کوئی چیز گھساؤں سوائے اس کلمے نے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نامناسب بات, کوئی ادب احترام کو کم کرنے والی بات میں گھسا دوں, ایسا مجھے کوئی موقع نہیں ملا. بس یہ ایک موقع ایسا ملا کہ ان کے بارے میں میں کوئی بات گھسا دوں, اور میں نے موقع سے فائدہ اٹھا لیا. چونکہ معاملہ مستقبل کے متعلق تھا, اب کوئی مجھے آپ کے بارے میں پوچھے صوفی جی کیسے ہیں, سفید کپڑے ہمیشہ پہنتے سبق میں؟ ہاں ہمیشہ سبق میں سفید کپڑے پہن کے آتے ہیں, روزانہ پابندی سے آتے ہیں, روزانہ پابندی سے آتے ہیں, سبق میں جھونکے نہیں لگاتے, سبق میں جھونکے نہیں لگاتے. صوفی جی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ آئندہ مستقبل ان کا کیسا رہے گا؟ بھائی آئندہ کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا, صوفی کب کیا کر ڈالے. اب مجھے آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہنی ہے, لیکن آپ کے اخلاق ایسے ہیں کہ کوئی بری بات میں آپ کے بارے میں کہوں اس کا موقع ہی نہیں میرے پاس. لیکن آئندہ مستقبل کے متعلق میں یقین دلانے کے بجائے شک کھڑا کر دوں سامنے والے کے ذہن میں, تاکہ اس کے دل میں تعظیم پیدا نہ ہونے پاوے. تو یہ ابو سفیان نے ہرک لکے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ غلط بات گھسانے کی گندی کوشش کی کہ ابھی تو معاہدے میں برابر ہے لیکن کب کیا کر ڈالے کچھ نہیں کہہ سکتے آپ. بعض شعرا نے اس کا ایک مطلب اور بھی بیان کیا ہے, وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّتٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَائِلٌ فِيهَا. اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مکہ المکرمہ میں ان سے معاہدہ ہوا, کئی دن ہو گئے, پھر ہم تو سفر میں نکل آئے, سفر کی زمانے کے اندر انہوں نے وہاں کیا کیا وہ ہم کو معلوم نہیں ہے. ہم جو بات تم کو کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت نہیں کی, وہ کب تک کی کہہ رہے ہیں؟ جب تک کہ ہم نے مکہ میں ان کے حالات دیکھے وہاں تک. ہم تو کئی دنوں سے سفر میں نکلے, ہماری غیر حاضری میں انہوں نے کچھ کیا ہو تو اس کا ہمیں پتہ آتا نہیں ہے. دیکھ لیا یہ بھی, کیونکہ اس زمانے کے اندر واٹس اپ تو تھے نہیں کہ کچھ ہوئے تو فوراً اطلاع آ جاوے, گروپ میں آ جاوے, سرکل میں آ جاوے. تو کہا کہ دیکھو ہم تو کئی دن سے سفر میں نکلے ہوئے ہیں, وہاں مکہ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے کہ اتنے دنوں میں کیا کیا. جیسے کہ بھائی کوئی طالب علم مدرسے میں دو مہینے غیر حاضر رہے ہوئے, اب اس کو کوئی آدمی مدرسے کے بارے میں پوچھے کہ بھائی آپ کے مدرسے میں فلاں چیز لگ گئی, بھائی دیکھو شعبان میں تو نہیں لگی تھی, ابھی دو مہینے میں لگ گئی ہو تو پتہ نہیں, میرے علم میں نہیں. تو ابو سفیان کے کہنے کا مقصد یہ تھا, ہم سفر میں نکلے وہاں تک تو انہوں نے خیانت نہیں کی, لیکن ہمارے سفر میں نکلنے کے بعد انہوں نے کوئی خیانت کی ہو تو ہمیں دوران سفر اس کی اطلاع نہیں ہے, خبر نہیں ہے, یہ کہا اس نے. پھر آگے قال فهل قاتلتموه, ہرقل نے کہا کیا تم نے اس مدعی نبوت سے قتال کیا ہے؟ قلت نعم, میں نے کہا ہاں ہماری ان سے جنگیں ہوئی. قال, ہرقل نے کہا فکیف کان قتالکم ایاہ, کس طریقے سے تمہارا ان کے ساتھ جنگ کرنا ہوا؟ قتالکم فیہ, تمہارا ان کے معاملے میں جنگ کرنا کیسا رہا؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال. تو میں نے کہا کہ لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان میں ڈول کی طرح ہے، لڑائی ہمارے اور ان کے درمیان میں ڈول کی طرح ہے. سجال کس کو کہتے ہیں؟ نمبر ایک پانی سے بھرا ہوا ڈول، نمبر دو بڑا ڈول، نمبر تین کوئی بھی ڈول، مطلق ڈول. سجال کا لفظ اس کے اوپر استعمال ہوتا ہے. ینالو منا وننالو منہو، کبھی وہ ہم سے نقصان یا فتح پا لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے نقصان اور فتح پا لیتے ہیں. دیکھو ینالو منا وننالو منہو کا ترجمہ، کبھی وہ ہم سے نقصان یا فتح پا لیتے ہیں اور کبھی ہم ان سے نقصان یا فتح پا لیتے ہیں. یہاں ابو سفیان ہرقل کے سوال کو غور کرنے کے قابل ہے. کیا پوچھا؟ کہ فکیف کان قتالکم ایاہو، تم نے جو ان سے قتال کیا وہ کیسا رہا؟ اور اس سے پہلے فہل قاتل تم، کیا تم نے ان سے لڑائی کی؟ دیکھو سوال کا احتیاط دیکھو، ہی رکھ لگا بڑا محتاط سوال ہے. شرا فرماتے ہیں نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں ہرقل نے قتال کی نسبت حضور کی طرف نہیں کی بلکہ ابو سفیان اور ان کی قوم کی طرف کی. جیسے کہا جائے نا بھائی، سنا کہ تمہاری ان سے لڑائی ہوئی آج دوپہر میں کھانے کے بعد، تو آپ کیا کہو گے؟ استاد جی معاف کیجئے، میں نہیں لڑا تھا، وہ لڑنے آیا تھا میرے پاس. اب یہ کہنا کہ تمہاری لڑائی ہوئی، یہ تم پر جنگ کا الزام ہوا نا کہ تم لڑنے گئے تھے، لیکن اس کے بجائے کیا کہ وہ تمہارے پاس لڑنے آیا تھا سنا آج دوپہر میں، تو اس میں تمہارا اکرام رہا کہ تم تو شریف آدمی ہو، کسی سے لڑنے نہیں جاؤ گے، لیکن وہ کالو تم سے لڑنے آیا ہوا تھا. دیکھ لیا انداز تعبیر کا. تو یہاں ہرقل نے بڑے ادب کی تعبیر کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قتال کی نسبت نہیں کی بلکہ کیا کہا؟ قاتل تم، تم نے ان سے قتال کیا، اور کیسا تمہارا ان کے ساتھ قتال رہا؟ دیکھ لیا قتال کی نسبت اس نے کرامن ادبن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی بلکہ قوم قریش قوم ابو سفیان کی طرف کی. دوسری بات سمجھو، ہرقل کا یہ تعبیر استعمال کرنا سابقہ آسمانی کتابوں کے علم کی بنیاد پر تھا. سابقہ آسمانی کتابوں میں انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ نبی بلا ضرورت ابتدا بالقتال نہیں کیا کرتے، نبی بلا ضرورت ابتدا بالقتال نہیں کیا کرتے. یہ ہرقل نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اس لیے ہرقل نے پوچھا کہ نبی تو ابتدا بالقتال نہیں کریں گے، تم ہی لڑنے گئے ہوں گے وہاں پر. اور حقیقت بات بھی وہی ہوئی کہ بدر کی لڑائی مشرکین مکہ کی طرف سے وجود میں آئی، احد کی لڑائی مشرکین کی طرف سے وجود میں آئی، احزاب مشرکین کی طرف سے وجود میں آیا، تو وہی لوگ جنگ کی ابتدا کرتے تھے. تو ہرقل نے سابقہ آسمانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بلا ضرورت ابتدا بالقتال کرتے نہیں. تیسری بات سمجھو، ہرقل کی اس تعبیر کے پیچھے راز یہ ہیں کہ جنگ کی شروعات وہ کرے جن کے افراد کم ہو رہے ہوں، جنگ کی شروعات وہ کرے جن کے افراد کم ہو رہے ہو، جن کے افراد بڑھ رہے ہو اس کو لڑنے کی کیا ضرورت، جن کے افراد خود بخود بڑھ رہے ہو اس کو لڑنے کی کیا ضرورت. تو ابھی پوچھ لیا کہ ان کے افراد بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو پتہ چل گیا کہ وہ تو تعداد میں بڑھ رہے ہیں، تو جب ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو ان کو جنگ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ سمجھے یہ تینوں بات. تو ہرقل کا یہ جواب سوال بڑے ادب پر محمول ہے. और हमें भी इस तरह के अदब का लिहाज करना चाहिए कि किसी बड़े आदमी की तरफ लड़ाई की निस्बत नहीं करनी चाहिए कि भाई आज शेख कल्लन और शेख जम्मन के दरमियान जंग हो गए, ऐसा नहीं कि भाई वो लड़ने गया, किसी की तरफ हम लड़ाई की निस्बत ना करें, ये अच्छा नहीं मालूम होता। फिर जवाब क्या दिया, अल हर्बु बैनना व बैनहु सिजाल। क्या मतलब सिजाल का, कभी जंग में हम फाते होते हैं और वो शिकस्त खाते हैं, कभी वो फाते होते हैं हम शिकस्त खाते हैं। जैसे कुएं के ऊपर ढोल रखा हुआ हो पूरी बस्ती के लिए आम, जो जाएगा बारी 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 उससे पानी भरेगा। इस तरीके से भाई बदर में हम हार गए थे, उहुद में कुछ उनको शिकस्त उठानी पड़ी, तो इसमें बारी चलती है, कभी वो जीते हम हारे, कभी हम हारे वो जीते, चलता रहता है। सिजाल का ये मतलब निकलेगा। ये सारे सवाल जवाब हो गए। अब इन सवाल जवाब के बाद हिरकल ने बड़ा अहम सवाल किया, औलमाजा या अमुरुकुम, ये है बड़ा सवाल, वो नबी तुमको क्या चीज सिखलाते हैं। सारे हालात हो चुके, अब इनकी तालीमात बतलाओ, वो किस चीज की तुमको तालीम देते हैं, क्या सिखलाते हैं तुमको। माजा या अमुरुकुम, वो नबी तुमको क्या सिखलाते हैं। कुल तो मैंने कहा, यकूलो वो यूं सिखलाते हैं, वो उबुदुल्लाह वाहदा, ऐसे अल्लाह की इबादत करो जो तन्हा है। गोया तमाम बुत परस्ती की जड़ काट दी, तमाम शिर्क की जड़ काट दी, ऐसे अल्लाह की इबादत करो जो तन्हा है। वला तुशरिकु बिही शैआ, देखो वाहदहु में शिर्क की नफी शामिल है, फिर भी अलग से जिक्र किया जा रहा है ताकि जो है मुस्बत मनफी दोनों पहलू से तौहीद साबित हो जाए। वला तुशरिकु बिही शैआ, और तुम अल्लाह ताला के साथ इबादत में किसी को शरीक मत करो। वतरुकु मा यकुलु आबाउकुम, और आबाओ अजदाद के जमाने से जो रस्म व रिवाज चले आ रहे हैं वो तमाम बातों को तुम छोड़ दो। बहुत सी गलत बातें बेबुनियाद अरबों में चली आ रही थी, बहुत सी बात, और यही तकलीद आबा उनकी बड़ी दलील थी। इन्ना वजदना आबा नाला उम्मा व इन्नाला आसारिहिम मोहतदुन मुक्तदुन। वो तकलीद आबा अंधे होकर करते थे, जब उनको कोई भी बात कही जाती तो क्या कहते, हमारे यहाँ तो बाप दादा के जमाने से जो चल रहा है हम तो वही करेंगे। आज भी बहुत से मुसलमान जो रस्म व रिवाज के पाबंद है वो यही बात कहते हैं कि भाई हमारे खानदान का ये रिवाज है, हमारे खानदान की ये रस्म है, हमारे बाप दादाओं के जमाने से ये चला आ रहा है इसलिए करना पड़ता है। ये बड़ी खतरनाक चीज। शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं कि रस्म तो दीन सही के मुकाबले में अलग से एक दीन है। आबाई रस्म ये दीन सही के मुकाबले में एक अलग से दीन है। इतनी खतरनाक चीज है रस्म और रिवाज। आज कितने काम मुसलमान करते, क्यों करते, भाई खानदान में चला आ रहा है, बस्ती का रिवाज है, इलाके में ये चला आ रहा है, भाई शरीयत में इसकी क्या है, शरीयत तो हम नहीं जानते, हमारे यहाँ ऐसा होता चला आ रहा है इसलिए करेंगे, यही है रस्म रिवाज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की जड़ काटी। देखो अबू सुफियान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वतरुकु मा यकुलु आबाउकुम, बाप दादों के जमाने से जो बात कही चली आ रही है वो सब छोड़ो, रस्म व रिवाज छोड़ो। वयामुरुना बिस्सलाती वस्सिदकी वल अफाफी वस्सीलती, और नबी हमको हुक्म देते हैं नमाज पढ़ने का और सच्चाई का। बाज रिवायतों में सदका आया है कि हमको सदका करने का हुक्म देते हैं, और सदका और सिदक करीब करीब है, इसलिए कि सदका कौन करेगा, जो सिदक फिल ईमान होगा वही सदका करेगा। ईमान में सिदक है तो सदका है, वरना ईमान में सिदक नहीं है तो सदका भी नहीं है, इसलिए दोनों किस्म के अल्फाज में बिल्कुल तत्बीक है कि वो नबी हमको सदके की तालीम देते हैं وہ نبی ہم کو سچائی کی تعلیم دیتے ہیں. والعفاف, عفاف کے دو مطلب ذہن میں رکھنا, ہم کو پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں, یعنی زینا سے پاک دامن رہنا, غیر محرموں سے پاک دامن رہنا, اور دوسرا مطلب ہے سوال کرنے سے پاک رہنا, کہ لوگوں سے ہم مانگتے نہ پھرے, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے نہ پھرے, بیجا سوالات کرتے نہ پھرے, اس سے نبی ہم کو روکتے ہیں. وسیلتی, اور صلہ رحمی کرنے کا ہم کو حکم دیتے ہیں. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں. اور دوسرا مطلب کیا, ما امر اللہ به ان یوصل, اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا, مثلا اللہ کے ایمان کے ساتھ نبی کا ایمان جوڑو, اللہ اور نبی کے ایمان کے ساتھ آخرت کا ایمان جوڑ دو, یہ ہیں ایوس اللہ کا دوسرا مطلب. تو صلہ کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ جن جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے, اس کو جوڑنے کے لیے نبی ہم کو حکم دے رہے ہیں. بعض روایت میں بھی آیا الوفاء بالعہد, عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں, یہ بھی بعض روایت میں ہے. شراب عجیب بات فرماتے ہیں, یہ ہیں دین اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ, لب لباب خلاصہ, جو اس زمانے کا ایک مشرک بھی جانتا ہے. ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, وہ بھی دین اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ اور لب لباب جانتے ہیں کہ توحید, رسم و رواج کو چھوڑنا, نماز, سچائی, صدقہ, پاک دامنی, صلہ رحمی, عہد پورا کرنا, امانت داری, یہ اسلام کی مقدس اور مبارک تعلیم ہے. کاش کہ آج کا کہلانے والا مسلمان اس کو سمجھ لے اور اس کو اپنا لے, جو اس زمانے کا ایک مشرکوں کا سردار دنیا کے دوسرے کافر بادشاہ کے دربار میں ترجمانی کر رہا ہے کہ اسلام کی یہ مقدس اور مبارک تعلیمات ہیں. اور ایک قاعدہ ہے نا, والفضل ما شہیدت بہ الاعداء, فضیلت کی چیز وہ ہے جو دشمن گواہی دے رہے. اب ابو سفیان جیسے دین کے دشمن اسلام کی تعلیمات کی یہ گواہی دے رہے, یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ اسلام کی یہ مقدس اور مبارک تعلیمات ہے. یہ تعلیمات کا خلاصہ ایک غیر مسلم نے دوسرے غیر مسلم کے سامنے اسلامی تعلیم کا یہ خلاصہ پیش کیا, ہر ہر چیز اس میں بڑی اہمیت کی مالک ہے.